नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गहराई, जिसे लिखा है राजेश कुमार रंगा ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गहराई। अस्पताल के लिफ्ट में ही अंजलि को डॉक्टर सागर मिल गए। उन्हें देखते ही उसने पूछा, अब राहुल की तबीयत कैसी है? रात को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं, अब तो पहले से काफ़ी सुधार नज़र आ रहा है। जिसकी पत्नी तुम्हारे जैसी हो, उसे बीमारी भी ज़्यादा दिन कैद नहीं रख सकती। अंजलि ने फीकी मुस्कुराहट के साथ डॉक्टर सागर को धन्यवाद दिया, फिर वह राहुल के कमरे की ओर चल पड़ी। बाहर नर्स बेंच पर बैठी सुस्ता रही थी। पेशेंट सो रहा है, नर्स ने कहा। कोई ऐसी वैसी हरकत, शोर शराबा या तमाशा तो नहीं किया? अंजलि ने पूछा। नहीं, बस वही पुरानी कहानी बार बार दोहरा रहे हैं। मैं अंजलि की नज़रों में गिर गया, मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उसके विश्वास को ठेस पहुंचाई, नर्स ने बताया। अंजलि दबे पैरों से कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलने का राहुल पर खास असर नहीं हुआ। हल्की सी कराह लेकर वह फिर गहरी नींद में सो गया। रात का दूसरा पहर शुरू हो गया था। अंजलि की आंखों में नींद का नाम न था। मन का दर्द रह रहकर आंखों के रास्ते आंसू बनकर बाहर आने को बेचैन था। राहुल बेखबर सो रहा था। उसे किसी की भावनाओं से कोई सरोकार न था। उसे पागल करार कर दिया गया था। अंजलि उन डॉक्टरों के सहारे दिन गुजार रही थी, जो राहुल के जल्दी ठीक होने का यकीन कई बार उसे दिला चुके थे। राहुल पर अंजलि ने जमाने भर का प्रेम निछावर कर दिया था। उसे क्या पता था कि इस भावुक नायक के अंदर कभी कोई खलनायक उभर आएगा। अंजलि के पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने बार बार उसे चेतावनी दी थी। इस तरह अमीर गरीब के बीच शादी ब्याह का रिश्ता सिर्फ किताबों और किस्सों तक ठीक होता है, वास्तविक जीवन में नहीं। तुम शान शौकत में पली भरी हो, तुम्हारा अपना एक लाइफ स्टाइल है। अपने आप को जानबूझकर गरीबी के दलदल में मत फेंको। लेकिन पिता की दलीलें अंधे प्यार के आगे ठहर न पाईं। दिल के फैसले में जीरा या दलीलों का कोई स्थान नहीं था, वहाँ सिर्फ भावनाएँ काम करती हैं। शादी के बाद राहुल और अंजलि ने दिल्ली छोड़कर मुंबई में रहने का फैसला किया। राहुल को वहीं एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। नौकरी बस गुजारे लायक थी। महलों में रहने वाली अंजलि मुंबई की एक चाल की शोभा बन गई। राहुल को मन ही मन इस बात पर मलाल था। अंजलि को खुश रखने के लिए वह अधिक से अधिक पैसा कमाने की जी तोड़ कोशिश करता। नौकरी, ओवर टाइम, पार्ट टाइम सभी कुछ करके भी उसका हाथ तंग ही रहता। जिंदगी गुजारना राहुल का लक्ष्य ना था, वह जीना चाहता था। अंजलि के साथ हर पल को यादगार बनाकर संजोना चाहता था। ऑफिस की कैंटीन के एक कोने की दीवार पर सिर टिकाए राहुल रुपए पैसों की उधेड़ बिन में खोया था कि सागर और अनवर ने आकर उसकी तंद्रा भंग कर दी। ट्रक में सामान लादा जा चुका है और चालान पर राहुल के दस्तक होने बाकी हैं। एक नज़र ट्रक पर डालकर राहुल ने चालान अनवर को थमाया और वापस आकर विचारों की टूटी श्रृंखला को जोड़ने की कोशिश करने लगा। छुट्टी के बाद वह लोकल रेल के प्लेटफार्म की तरफ भाग रहा था कि पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दी। मुड़कर देखा तो अनवर था। करीब आकर उसने एक लिफाफा राहुल को पकड़ा दिया। इसमें क्या है? राहुल ने अचरज से एक नज़र लिफाफे पर डालते हुए पूछा। 5,000 रुपये हैं आज की कमाई। क्या मतलब? राहुल ने आवाक होकर पूछा। आज जो चालान तुमने साइन किया था उसमें 500 डिब्बे ज़्यादा गए थे। 10 रुपये के हिसाब से पूरे 5,000 रुपये हर हफ्ते। खुश हो ना? अनवर ने बिना पलके झपकाए पूछा। राहुल को काटो तो खून ने। उसने विश्वास के आधार पर डिब्बों को गिने बिना चालान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लिफाफा जेब में डालकर वह खचाखच भरे डिब्बे में चढ़ गया। उसके विवेक ने दिमाग पर बहुत दस्तक दी कि यह चोरी है और उसे जाकर मालिक को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन अंजलि के चेहरे को देखकर उसकी ज़रूरतों के एहसास ने राहुल के सोचने की दिशा बदल दी। चंद हफ्ते यूं ही चलता रहा, कमाई बढ़ने लगी थी। अंजलि को लगा कि ओवरटाइम और वेतन की बढ़ोतरी इस खुशहाली की वजह है। उसे क्या पता था कि जीवन की इस नई हरियाली में बेईमानी की खाद डाली गई है। यह हरियाली भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और जल्द ही मौसम ने करवट बदली। किसी भी मालिक की नज़रों से मुलाजिमों की चोरी अधिक दिनों तक नहीं बच पाती। जल्द ही राहुल का तबादला टाइम ऑफिस में कर दिया गया, जहां दिन भर मजदूरों से सिर खपाई के अलावा उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। उस दिन राहुल कैंटीन में अनवर और सागर के साथ बैठा अपनी गरीबी का रोना रो रहा था। मैं पैसे कमाना चाहता हूँ सागर, बस एक बार कहीं से मोटी रकम हाथ लग जाए तो मैं उस पूंजी से कारोबार शुरू करूँगा, फिर मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा, राहुल ने कहा। हम जानते हैं भाई, एक बार तुम्हारे पास पूंजी आ जाए तो तुम अपने साथ हमारा जीवन भी सुधार दोगे, लेकिन यह पैसा आएगा कहाँ से, कौन देगा हमें इतनी बड़ी रकम। इसी बात का तो रोना है दोस्त, राहुल ने अनवर के कंधे पर हाथ रखा। अचानक अनवर को जैसे कुछ याद आया। राहुल, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत पैसे वाले हैं ना? हाँ, तो उनसे पैसे नहीं मिल सकते उधार? पागलपन की बात मत कर अनवर, उन्हें मेरी शक्ल तक से नफरत है। मेरे पास एक स्कीम है जिससे तुम्हें पैसा मिल सकता है, तू उस पैसे को धीरे धीरे चुका सकता है। वे खुद तुझे मिन्नतें करके पैसे दे जाएंगे जिससे तू धंधा कर सकता है, कमाई होते ही पाई पाई चुका देना। ऐसी कौन सी स्कीम है तेरे पास, राहुल ने अचरज से पूछा। यह बताना ठीक नहीं। कल शाम को ऑफिस से सीधे गेटवे चलेंगे, वहीं समंदर के किनारे सारी बातें करेंगे, अनवर ने कहा। गेटवे पर उस दिन खासी चहल पहल थी। समुद्र के पास की एक दीवार पर बैठे अनवर और सागर राहुल को कुछ समझा रहे थे। राहुल के चेहरे के भाव बता रहे थे कि शुरू शुरू के विरोध के बाद उसे अनवर और सागर की बातों में कुछ दम नजर आने लगा। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं और अंजलि खंडाला जाएंगे, वहाँ तुम लोग उसे अगवा कर लोगे? अगवा हम नहीं करेंगे, कोई और ही करेगा, हम सिर्फ करवाएंगे, अनवर ने कहा। अगवा करने के बाद फिरौती की रकम तुम मांगोगे उतनी रकम जितनी मैंने कभी नहीं देखी, मैं इनकार कर दूंगा, अपनी लाचारी बताऊंगा, राहुल ने स्कीम को दोहराते हुए कहा। हम लोग फिर अंजलि के माता पिता को फिरौती के लिए फ़ोन करेंगे, वे तुम्हारे पास आएंगे, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए यह रकम उन्हें बहुत अधिक नहीं लगेगी, तुम पैसे लेने से इनकार कर देना, अपनी खुददारी का वास्ता देना, वे मिन्नतें करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हमारी शर्त होगी कि फिरौती की रकम हम सीधे उनसे नहीं बल्कि तुम से लेंगे, लिहाजा वे तुम्हारे पैरों पर पड़ेंगे कि किसी तरह दे आओ और बेटी को सही सलामत ले आओ। मैं पैसे लेने को राजू होऊंगा, मगर साथ ही शर्त भी रखूंगा कि वह पैसा उधार रहेगा, एक कर्ज होगा, यही ना तुम्हारा कहना, राहुल ने पूछा। हाँ, और उस कर्ज को तुम धीरे धीरे उतार देना, फिरौती के रकम से तुम अपना धंधा शुरू करना और आहिस्ता आहिस्ता सारा कर्ज उतार देना। लेकिन तुम्हें यकीन है कि अंजलि के माता पिता पैसे लेकर आएंगे, राहुल ने आशंका जताई। घुटनों के बल आएंगे भाई, आखिर अंजलि उनकी बेटी है। मगर क्या यह धोखा नहीं होगा, मैं अंजलि के साथ फरेब नहीं करूँगा इस तरह की हरकत करके, राहुल ने कहा। मुझसे नहीं हो पाएगा, जैसा बेईमानी है। कोई बेईमानी नहीं, यह तो तुम्हारा प्यार है अंजलि के प्रति, तुम उसे खुश देखना चाहते हो ना, यही तरीका है जिससे तुम उसे वे तमाम खुशियां दे सको जो देना चाहते हो। मगर इसमें खतरा भी तो है, राहुल ने कहा। खतरा है मगर तुम्हारे लिए नहीं, अगर कभी खतरे का बाजा बजाती वो हमारे सिर के आसपास बजेगा, तुम तो दूर खड़े रहोगे, तुम्हारी पत्नी तो अगवा कर ली होगी, तुम तो दुनिया के सबसे परेशान इंसान होगे, मगर तुम यह खतरा जानपुर क्यों उठा रहे हो? दोस्ती के लिए राहुल भाई, फिर तुम्हारा धंधा चल निकला तो हम भी लाला की नौकरी छोड़ तुम्हारे ही हाथ बटाएंगे। हाँ, राहुल ने धीरे से कहा और चर्च गेट लोकल रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली बस में चढ़ गया। अगले 2-3 दिन राहुल के लिए बड़ी उलझन भरे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक ओर जहां अनवर और सागर के प्रस्ताव में उसे कोई खोट नज़र नहीं आ रहा था, वहीं दूसरी ओर ऐसी हरकत उसे घिनौना भी लग रही थी। वह तीसरे दिन अनवर के पास पहुंचा। क्या फैसला किया राहुल भाई, कुछ करोगे भी या सोचते ही रहोगे? अनवर ने सीधे प्रश्न किया। मैं सोच रहा था, राहुल ने कुछ कहना चाहा। यह सोच बहुत बुरी चीज़ है, इस काम में कुछ भी तो गलत नहीं है, बस पैसा लेना और धीरे धीरे चुका देना, जल्द ही बात भी आई गई हो जाएगी। इसी बहाने अंजलि के घर वाले तुम्हें अपना लेंगे। अंजलि कितनी खुश होगी जब वो अपने माता पिता भाई बहनों से मिलेगी। सोचना ही है तो यह सोचो कि इसमें एक तीर से कितने शिकार होंगे। अंजलि को उसका छूटा परिवार दोबारा मिलेगा, तुम्हारे घर में सब कुछ होगा, खुशियाँ होंगी, आराम की सभी चीज़ें होंगी। शायद तुम ठीक कहते हो, मैं इसी शनिवार को खंडाला जाने का कार्यक्रम बनाता हूँ, तुम लोग सभी इंतजाम कर लो, राहुल ने उठते हुए कहा। तय हुआ कि शनिवार की शाम को सनसेट पॉइंट पर राहुल और अंजलि चलते चलते बहुत दूर निकल जाएंगे और वहीं पूरे कारनामे को अंजाम दिया जाएगा। अंजलि की आदत जहाँ सुबह उठकर प्रकृति के साथ अटखेलियाँ करने की थी, वहीं राहुल को सुबह की नींद बेहद प्यारी थी। खंडाला में राहुल को सोता हुआ छोड़कर अंजलि सुबह की सैर पर चल पड़ी। थोड़ा चलने के बाद वह एक नारियल पानी वाले के पास रुक गई। तब भी उसने देखा कि पास के स्टीडी बूथ पर कोई फोन पर बात कर रहा है। उसकी बातचीत में अचानक राहुल का नाम सुनकर अंजलि चौंक गई। फोन पर बात करने वाला व्यक्ति दूसरी ओर वाले को कुछ समझा रहा था। आज शाम का राहुल साहब का काम करना है, उसकी बीवी को उठाकर हमें तुम्हारे अड्डे पर लाना है। बस 1-2 दिन में उसकी बीवी अंजलि के माँ बाप पैसा दे देंगे जिसे राहुल ले लेगा। जब तक के लिए तुम्हारे अड्डे की जरूरत पड़ेगी भाई। बीवी को खुद मियाँ अपने दोस्तों से मिलकर किडनैप कर रहा है। खैर अपने को क्या, अपने को तो 5-10 हज़ार से मतलब है, ज़्यादा लफड़ा भी तो नहीं है। सारा काम तो उसका मियाँ ही करेगा, हम तो बस शाम को सनसेट पॉइंट पर अपना काम कर देंगे। अंजलि को ऐसा विश्वास ही ना हुआ कि जो कुछ भी उसने सुना है वह सच था। उसे लगा अभी वह सुबह की नींद में ही है। विचारों के उथूड़ बेन में फंसी वह कब होटल तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। लॉन में राहुल खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अंजलि के लिए आगे के पल गुजारना असंभव सा हो रहा था, दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। फिर भी इधर उधर की बातें करने के बाद अंजलि ने कहा, राहुल क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास अचानक ही एक साथ पैसा आ जाए ढेर सारा? राहुल हंस पड़ा। ऐसा करते हैं, बैंक लूट लेते हैं, बस एक ही झटके में करोड़पति, फिर ऐस का क्या ख्याल है? वैसे अचानक तुम्हें यह क्या सूझी? बस यूं ही सोच रहे थे कि बैंक लूटने के बजाय किसी करोड़पति की औलाद को अगवा कर लेते हैं, तुम कोई स्कीम क्यों नहीं सोचती? अंजलि यह बात कहकर कनखियों से राहुल की ओर देखने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। बहुत हो गया मजाक, अब तैयार होकर बाहर घूमने चलते हैं, राहुल ने कमरे का रुख करते हुए कहा। वह दिन अंजलि और राहुल दोनों के लिए उथड़ बुन से भरा था। राहुल जहां डरा और सहमा हुआ था, वहीं अंजलि निराश और दुखी थी। सनसेट पॉइंट पर डूबते हुए सूरज को देखते काफ़ी युवा जोड़े इकट्ठे हुए थे। अंजलि को लगा था मानो वह उसके जीवन का भी सूर्यास्त है। ठंडी हवा उसकी हल्की कपकपी पैदा कर रही थी। इतनी ठंडी हवा चल रही है मगर तुम्हारे चेहरे पर पसीना क्यों आ रहा है राहुल? अंजलि ने अचानक सवाल किया। यहाँ बहुत भीड़ है ना, चलो वहाँ दूर चलते हैं, वह अंजलि की बात काटते हुए बोला। क्या इरादा है, कहीं अकेले में मुझे पहाड़ी से नीचे तो ना गिरा दोगे? अगर तुम गिरोगी तो साथ में मैं भी ना गिर पड़ूंगा, राहुल ने चलते चलते कहा। इतना प्यार करते हो मुझसे? बेशक, मैं तुम्हें सारे जहाँ की खुशियाँ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम राज करो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। तभी पास के झुरमुट में 2 आकृतियाँ प्रकट हुई। अंजलि उसके लिए पहले ही तैयार थी। वह उनकी गिरफ्त में आने से पहले ही भाग कर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गई। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वरना मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी, अंजलि अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाई। दोनों व्यक्ति वहीं सहम कर खड़े हो गए। तुम मुझे अगवा कराना चाहते थे ना राहुल? धोखेबाज फरेबी, अंजलि चिल्ला रही थी। मुझे अगवा कराना चाहते थे? मुझे? जिसने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप भाई बहन सभी को छोड़ा। अंधी हो गई तुम्हारे प्यार में। मेरे पिता से पैसा लूटने के लिए तुमने मुझे ही मोहरा बनाया। तुमसे तो अच्छे वे लोग हैं जो सर पे शर्म होकर दहेज मांगते हैं और ना मिलने पर अपनी पत्नी को हर रोज ताने मारकर एक दिन जान मार देते हैं। अंजलि, तुम मेरी बात सुनो प्लीज, राहुल ने कुछ कहना चाहा। मैं पैसे लौटा देता। झूठ बोलते हो तुम। मेरे पास भी एक ऐसी स्कीम है जिससे तुमको लाखों मिलेंगे। मेरे नाम से काफ़ी ज़मीन जायदाद है, दिल्ली की फैक्ट्री, बीकानेर की हवेलियाँ, बेंगलोर का फार्म हाउस, कई कंपनियों के शेयर, सब मेरे मरने के बाद तुम्हारे हो जाएंगे। तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे, है ना अच्छी स्कीम। तुम्हें कोई जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, बस मेरी लाश ढूंढनी पड़ेगी। तब तक तो इंतज़ार कर ही लोगे ना। अंजलि, राहुल अपनी पूरी शक्ति से चीखा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने किए पर वाकई शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद से, अपने दिल से, अपनी नज़रों से दूर ना करो। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे प्यार के लिए किया, तुम्हें खुश रखने के लिए किया। मेरी नीयत में खोट ना था। खोट था तो इस सोच में कि पत्नी को खुश रखने के लिए पति को किसी भी कीमत पर खुशियाँ खरीदनी चाहिए। मैं भूल गया कि पत्नी अपने पति के प्यार के सहारे भी जीवन बसर कर सकती है। उसके प्यार की गहराई तक पहुंचने का सहारा दौलत नहीं, पवित्र प्रेम होता है। राहुल की बात सुनकर अंजलि ठिठकी, मगर रुकी नहीं। राहुल का चीखना जारी था, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मगर तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे तो मेरा पश्चाताप मुझे जीने नहीं देगा। मेरे जिंदा रहने की कोई वजह नहीं रहेगी। मैं यहीं पहाड़ी से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। कहते हुए राहुल पहाड़ी से कूद पड़ा। कटीली झाड़ियों के कारण राहुल का तन तो बच गया, लेकिन उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। शरीर के जख्म भरने के बाद राहुल महज एक देखने की चीज बन कर रह गया। सब कुछ खत्म हो गया था। खत्म ही नहीं हुआ था, अंजलि का विश्वास कि राहुल एक दिन ठीक होकर उसके जीवन में नया रंग भर देगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।